पनामा की लॉ फर्म के लीक हुए करीब 11 मिलियन डॉक्यूमेंट्स में भारत के कई बड़े नाम भी सामने आए हैं, जिन्होंने सीक्रेट तौर पर विदेशों में यानी टैक्स हेवेंस में अकाउंट्स और कंपनियां बना रखी थी। भारतीय अखबार इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक इनमें अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, डीएलएफ ग्रुप के केपी सिंह और इंडिया बुल्स के संस्थापक का नाम भी शामिल है। हमारे साथ भारत से इसी पर बात करने के लिए जुड़े हैं आर्थिक मामलों के वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी साहब। सर, SBS रेडियो हिंदी पर आपका स्वागत है।
बहुत बहुत शुक्रिया
हर्षवर्धन सर। सबसे पहले मैं आपसे यही पूछूंगा कि काले धन पे भारत में पिछले 2 साल से बहस हो रही है, इस खुलासे का क्या असर पड़ रहा है भारत में अब?
देखिए, निजी तौर पे अगर मैं कहूंगा तो फिलहाल जो काला धन है और ये खुलासा जो है, इन दोनों का आपस में कोई सीधे सीधे लेना देना नहीं है, क्योंकि दोनों के कॉन्टेक्स्ट बहुत अलग हैं। और जब हम बात करते हैं पनामा लीक्स की और जब हम बात करते हैं उस काले धन की, जो काला धन हिंदुस्तान में मई 2014 के चुनावों में मुद्दा बना, जो काला धन 2009 से जिस पर यूपीए सरकार ने ढेर सारी कमेटियां बनाई और ढेर सारे काम किए, तो दोनों कॉन्टेक्स्ट बहुत अलग है। क्योंकि वो काला धन ऐसा काला धन था जिसके बारे में बार बार ये कहा जाता है कि लोगों ने स्विस बैंक में बहुत बड़ी संपत्ति, जो भारत की संपत्ति है, उसको वहां जमा करा दिया और उस पर टैक्स ही नहीं बचाया, पूरा का पूरा पैसा शिफ्ट कर दिया। और उस शिफ्टिंग से देश की अर्थव्यवस्था को धक्का लगा, जो आम टैक्स पेयर है उसके पैसे का नुकसान हुआ। अब ये जो पनामा लीक्स है जिसके बारे में बहुत ज्यादा इस वक्त चर्चा है और दुनिया में चर्चा है, क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े देशों में जो वहां के सबसे बड़े लोग थे, यानी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे लोग, वो जाते हैं और एक पनामा की एक लॉ फर्म के जरिए अपना कहते हैं कि हम मॉनेटरी क्या कहेंगे कि एडवाइजरी जैसा ले रहे हैं, लेकिन दरअसल वो अपने सारे काले पैसे को सफेद कर रहे होते हैं। अब भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो जो मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा काले धन पे इससे फर्क नहीं पड़ेगा, तो पहली बात ये है कि कम से कम इस बात के लिए भारत की सरकार को थोड़ा सा बधाई देना चाहिए कि उन्होंने तुरंत एक जांच, बड़ी जांच बैठा दी है और कम से कम इतने इसमें जितने सारे लोग हैं उनके खिलाफ या फिर उनके पक्ष में अगर कुछ निकलेगा तो वो भी, क्योंकि खिलाफ कह देना मैं बहुत उचित नहीं समझता हूँ इस मामले में। दूसरी जो एक बड़ी चीज है कि जिस समय की ये घटना है, हिंदुस्तान में 1991 का दौर आता है जब उदारीकरण होता है और उसके पहले की जो फिल्में हुआ करती थी उसमें स्मगलिंग इस तरह से दिखाई जाती थी जैसे अगर आपको सोना भी लेकर आना है, गहना भी बनवाना है, तो वो स्मगलिंग के जरिए आता था क्योंकि भारत के कानून बड़े खराब थे। अभी 2001 के बाद जो टैक्स के नए प्रोविजंस आए हैं और 2005 का जो अमेंडमेंट बताता है, तो वो बहुत साफ करता है कि हिंदुस्तान भी टैक्स के मामले में अब बहुत लिबरल देश हुआ है। लिबरल मीन्स लोगों की सहूलियत करने, क्योंकि लिबरल और रिफॉर्म का सीधा सा मतलब हम एंटी कॉमन मैन मान लेते हैं, ये बहुत बड़ी मुश्किल है संदर्भ के लिहाज। तो मुझे लगता है कि इन कंपनियों को उस संदर्भ में देखने की जरूरत है। और कम से कम एक बहुत अच्छी बात है कि लोगों का भ्रम टूटना एक चीज हुआ और दूसरा ये हुआ कि जो बड़े लोग हैं उनकी कंपनियां भारत के पैसे को ले जा रही हैं या दरअसल वो पैसे कहीं से भी कमा रही हैं और उसको पैसे को और ज्यादा बढ़ाने के लिए कर रही हैं, ये अभी पनामा लीक्स में आना बाकी है।
सर, भारत के वित्त मंत्री कहते हैं अरुण जेटली साहब कि देर इज नो होली काउ, वो किसी को ना छोड़ने की बात करते हैं, तो उनका इशारा क्या है?
देखिए, कम से कम मैं निजी तौर पर ये मानता हूँ कि वित्त मंत्री जी जो कह रहे हैं वो ज्यादातर कुछ उसी तरह का बयान हुआ जो हर आतंकवादी घटना के बाद भारत में गृह मंत्री दिया करते हैं। तो मुझे लगता है कि अरुण जेटली वित्त मंत्री के तौर पर इस तरह की बातें करने से बेहतर है कि वो कुछ ऐसे कड़े कदम करके दिखाएं, क्योंकि अभी तक वो उनकी तरफ से कोई ऐसा कड़ा कदम नहीं हुआ है जिसको कहा जाए, क्योंकि काले धन के मामले में वो देश की जनता साफ साफ देख चुकी है कि जो उन्होंने कहा वो किया नहीं। बार बार एमनेस्टी की बात होती रही, VDS की बात होती रही और वही चीज आगे बढ़ती रही कि आपको एक मौका और, तो उस एक मौका और के बाद जब सारे विंडोज बंद हो गए तो क्या उसके बाद देश के किसी काला धन जिसने रखा हुआ है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई क्या? और अगर नहीं हुई तो फिर वो पनामा के एक लॉ फर्म के पेपर लीक हो जाने पर कुछ लोगों के नाम आए हैं और वो ऑफशोर कंपनियों के हैं। ऑफशोर कंपनी मतलब एक तरह से बोगस फर्जी कंपनी बनाई और उसको बाहर से कंपनी बनाकर उसमें कुछ डायरेक्टर्स बनाए जो उनके तय किए हुए लोग थे और अपने यहाँ के कमाए हुए पैसे को वहां इन्वेस्ट करके टैक्स बचा लिया। तो जब आप देश में उस तरह के लोगों पर कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें से तो ढेर सारे इंटरनेशनल लिटिगेशन आएंगे, प्रोसीजर्स आएंगे, ढेर सारी एजेंसीज इन्वॉल्व हो जाएंगी। तो मुझे नहीं लगता कि वित्त मंत्री के तौर पर अरुण जेटली जी जो कह रहे हैं वो सिर्फ एक बयान से बहुत ज्यादा कुछ।
सर एक और चीज आपसे जानना चाहूंगा, अब तक जो 500 नाम करीब सामने आए हैं भारतीय लोगों के इन 11 मिलियन डॉक्यूमेंट्स में, उनमें फिलहाल किसी नेता का नाम नहीं दिखाई देता, बड़े अचरज की बात है। भारतीय नेता की बात कर रहा हूँ
जी। मुझे लगता है कि ये कम से कम हम हिंदुस्तान के लोगों के लिए थोड़ा सा, जो लोकतंत्र है कैसा भी चलता हुआ लेकिन हमारे लोकतंत्र में थोड़ा और भरोसा बढ़ाने वाला है। अब अगर आप ध्यान दीजिए तो जो कम से कम इंदिरा गांधी के बाद जो इमेज बननी शुरू हुई और उस इमेज को चरम पर पहुंचाया राजीव गांधी के समय के बोफोर्स कांड, उसके पहले मेनन साहब थे तो उनके समय में कई जीप घोटाले और दुनिया भर के घोटाले हुए थे, लेकिन नेताओं को लेकर हिंदुस्तान के जनमानस में उस तरह की समस्या नहीं थी। राजीव गांधी देश के ऐसे नेता थे जो नौजवान था जिसको देख के लगता था कि सब कुछ ये बदल देगा, कंप्यूटर लेकर आया है, बहुत कुछ करेगा। उसके ऊपर जब बोफोर्स घोटाले का दाग लगता है तो देश के लोगों को ये साफ लगने लगा कि नेता मतलब चोर, भारत में नेता मतलब बेईमान। बेईमानी कितनी है, कितनी कर रहे हैं वो अलग विषय है, लेकिन एक बात तो तय है कि कम से कम हिंदुस्तान का नेता यहाँ के बड़े अभिनेताओं, यहाँ के बड़े कारोबारियों और यहाँ के सो कॉल्ड जो प्रोफेशनल्स हैं, मतलब बड़े वकील, बड़े डॉक्टर, बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऐसे लोगों से बहुत ज्यादा ईमानदार है। और कम से कम अगर वो कहीं कुछ कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा या गलत तरीके से पैसे कमा भी रहा है तो वो विदेश नहीं ले जा रहा है, यानी उसका पैसा देश में ही है, या दूसरा तरीका कह सकते हैं कि वो डरता है कि उसका अपना पैसा यही लगना चाहिए। तो कम से कम हिंदुस्तान में और लोकतंत्र में भरोसा रखने वालों के लिए ये एक अच्छी खबर है। एक बात जरूर है, मुझे लगता है कि बार बार इसकी चर्चा होती है, लेकिन मुझे लगता है कि मोदी सरकार से कम दुनिया भी और देश के लोग भी ये उम्मीद रखते हैं कि आप कुछ बड़े मसलों पर आउट ऑफ द बॉक्स फैसले लें, यानी ऐसे फैसले नहीं कि जांच चल रही है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सभी के ऊपर कानून सम्मत कार्रवाई होगी। इससे आगे बढ़कर कम से कम 5-10 ऐसे बड़े कार्रवाई वाले फैसले होने चाहिए जिससे लोगों को लगे कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। क्योंकि ओवरऑल आप इकोनॉमी की बात करते हैं, ओवरऑल जब ब्लैक मनी की बात करते हैं, जब आप विदेश से आने वाले पैसे की बात करते हैं, मतलब सीधे तौर पर FDI की बात कर रहा हूँ, मैं काले धन की बात नहीं कर रहा हूँ, और जब आप ये बात करते हैं कि भारत क्या अब वर्ल्ड लीडर की जो एक कतार है उसमें खड़ा हो रहा है, तो फिर इस तरह के फैसले करते हुए दिखना होगा। और मुझे लगता है कि पनामा लीक्स और विजय माल्या तो बड़ी अच्छी एक कहे कि मौका मिला हुआ है नरेंद्र मोदी को, और मुझे लगता है कि शायद वो भी इस बारे में सोच रहे हो।
हर्षवर्धन जी, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत धन्यवाद।